نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دورہ قرآن 2024 DQ 2024 اور آج اس میں ہم خوبصورت ترین پارہ ہر پارے کی طرح پارہ نمبر 10 وَعْلَمُوا یہ کریں گے. ہم نے پچھلے پارے میں سورۃ الانفال کا کچھ حصہ کیا. سورۃ کے شروع میں ایک سوال کیا گیا تھا یسألونک عن الانفال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے, کیونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی. اس سے پہلے کے لوگوں میں مال غنیمت کو ضائع کر دینے کا رواج تھا, یا پھر میدان جنگ کے بعد ایک لوٹ مار شروع ہو جاتی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول تھا, جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کو لے کے اس کا مالک بن جاتا. اسلام نے اس دھاندلی کو اور اس بات کو کہ جو مال تمہارے ہاتھ لگ جائے وہ تمہارا ہے توڑ دیا, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت احکامات دیے. تو یہ تو تھا اس پارے کے نام کا تعارف کہ اللہ نے یہاں ہمیں علم دیا ہے, کہ پارے کا پہلا لفظ ہے وَعْلَمُوا, اور پارے کا آخری لفظ آپ اور میں جو سیکھیں گے نا لا یعلمون, وہ نہیں سیکھتے, وہ علم نہیں حاصل کرتے. تو اصل بات عمل ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس عمل کو لے کر عمل کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بنائیں. پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ گناہوں کے نتیجے میں دلوں پہ کفر لگ جاتے ہیں, اور مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. اور جو خوبصورت سا انالیسس جو ہمیشہ ہی یاد رہتا ہے بعد میں, وہ ہے سبیل الرشد اور سبیل الغی. ہم سب آج بھی اپنے آپ کو یہاں کھڑا کرتے ہوئے سوچیں, کتنے ہی دوراہے آئے, کتنے ہی چوراہے آئے, کتنے ہی مواقع تھے کہ میں پلٹ چکی ہوتی لیکن اللہ نے مجھے تھام لیا, کہی الحمدللہ. کوئی ایسا موڑ, کوئی ایسا دن, چلیے اور کچھ نہیں تو دورہ قرآن میں آنے کا ہی سوچ لیں. کیا ہر دن ایک نیا امتحان نہیں ہوتا؟ کتنی دفعہ سوچا گھر سے سن لوں, اور گھر سے سننے والوں نے یہ سوچا کہ بعد میں سن لوں گی کیا ہے. ایک جملہ شروع میں لکھ لیں سبھی, جہاں تک میری بات جائے. لائیو 3 گھنٹے بھی بندہ بیٹھ جائے سامنے, یعنی لائیو کلاس ہے, چاہے آپ گھر سے سن رہے ہیں یا ادھر بیٹھ کے, وہ ایسے لگتا ہے 1-1.5 گھنٹے میں گزر گئے. اور اسی کلاس کو اگر میک اپ کرنا پڑے, یعنی بعد میں اس کو سننا پڑے, تو وہ 2.5 گھنٹے, شاید 5 گھنٹے پہ محیط ہوتے ہیں. یہ ایک فطری سی بات ہے, آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے, اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ الحمدللہ ہر روز یہی کہتے ہیں کہ پارا شروع ہو گیا, پارا ختم ہو گیا, اچھا پتہ ہی نہیں چلا. آپ کو بھی لگتا ہے؟ میری بھی پیاس نہیں ختم ہوتی, بلکہ جب بالکل کہہ لیں کہ ہوٹھوں کے پاس جیسے پانی ہو اور بندے سے کوئی کہے کہ اب واپس کر دو گلاس مجھے, تو بالکل وہی کیفیت دکھتی ہے. تو لہٰذا پوری کوشش کیا کریں کہ ساتھ سنیں, آپ کے دل پہ اترے گا, اور سب سے بڑی بات ہے پھر آپ سننے والوں میں نہیں سنانے والوں میں بھی ہوں گے. اللہ کے پاس تو بندوں کا اجر ہے. پھر اسی طرح قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اور اللہ انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے آج کے پارے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. تو الحمدللہ اس پارے میں بھی آپ کا رب آپ کو پکار رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب آپ کان لگا کے سنتی ہیں, اور آپ نے نیت کر ہی لی ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا, جو مرضی مشکل ہو اور اللہ میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے. اور جتنا آپ کان لگاتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا. تو آج یا ایھا الذین آمنو سے اس پارہ نمبر 10 میں 5 آیتیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے تعارف, چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت کچھ بعد میں یاد رکھوائیں گی, یعنی جہاں 5 وہاں 10. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب کو ضروری ہے سیکھنا, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی سیکھ رہے ہیں کہ جو سن سن کر انسان کے دل میں بہت کچھ آتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس چیز کو سنتے جائیں گے, پڑھتے جائیں گے, اتنا ہمارا دل کرے گا کہ ہم اس کو مانیں. چلیے پارے کے تھیم پہ چلتے ہیں. بہت خوبصورت پارہ. تو آج کے پارے کا ٹاپک ہے غلبہ اسلام. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے لیے بھیجا تھا, اس پورے پارے میں غلبہ اسلام ہے. اور اسلام تو غالب ہوگا, हम पता नहीं होंगे कि नहीं। लिखिए, आज मुसलमान कमज़ोर है, इस्लाम कमज़ोर आज भी नहीं है, और इस्लाम ने गालिब होना है। दुआ कीजिए कि आप और मैं महरूम ना रहें। जितना आज आप और मैं इसमें हिस्सा डाल सकें, आज इस्लाम का शेयर गिरा हुआ है। जब किसी चीज़ को कोई ख़रीदता नहीं ना, तो सेल पे आ जाती है वो चीज़। ये मार्केटिंग का असूल है। सहाबा कराम के दौर में इतनी जल्दी तब्दीली क्यों आ गई? इतनी जल्दी कह लीजिए कि सिर्फ 10 साल में इस्लाम कहाँ से कहाँ गया? क्योंकि सहाबा कराम जो थे वो उस मेयार पे पूरे उतर रहे थे जो इस्लाम पेश करता है। आज बहुत रिसोर्सेज होने के बावजूद, बहुत तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी उम्मत मुस्लिमा क्यों मखलूब है? क्योंकि आज वो किरदार नहीं है। तो इस्लाम की जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती, इस्लाम की जंग अखलाक और किरदार से जीती जाती है। मुसलमान हथियार रखता है, लेकिन उसका भरोसा हथियारों पे नहीं होता। किसी गैर मुस्लिम का भरोसा अगर हथियारों पे है और हथियारों के होने को वो फ़ख्र समझता है, तो वो अच्छी तरह से जान ले कि इस्लाम में हथियार इंसान होते हैं, और ऐसे इंसान के जिनको मुसख़र करना मुमकिन ही ना हो। ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे, ये था इस्लाम का वो हथियार। तो आज हम देखेंगे गलबा इस्लाम में। आहों से सोजे इश्क मिटाया ना जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। पूरी दुनिया की भूखे मिल भी जाए ना, लेकिन इस्लाम फिर भी ज़िंदा रहेगा। ये होप है, ये उम्मीद है। पूरे पूरी बस्तियां तबाह कर दी जाएं, उम्मत मुस्लिमा की नस्ल कुशी कर दी जाए, आज के दौर में भी वही सब हो जाए जो कि फिरौन के दौर में हुआ, फिर भी बी होपफुल, इस्लाम गालिब है। सिर्फ काम यह कि तुम क्या लेते हो, तुमने देना नहीं है इस्लाम को। याद रखिए, इस्लाम को भिखारी थोड़ी है, कोई मंगता थोड़ी है कि उसको मेरे आपके थोड़े से वक्त की ज़रूरत है, आपके थोड़े से वक्त की ज़रूरत है, मेरे एक छोटे से घर की, मेरी गाड़ी की, मेरे पैसे की, मेरे खाने पीने की ज़रूरत है। ये तो एक ऑनर है, जस्ट फॉर ऑनर। आप किसी को शादी में कोई गिफ्ट देते हैं तो कोई वो उसके ऊपर कोई तर्स खा के देते हैं? नहीं, आप क्यों देते हैं? क्योंकि आप उसे इज्जत देते हैं। तो किसी को खिलाना, किसी को पिलाना, किसी को बिठाना, ये तर्स के लिए नहीं होता। तो वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी, जिसका ये गुमान है ना कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो इस्लाम का पता नहीं क्या हाल होगा। नहीं, काम पूरी ज़िम्मेदारी से कीजिए। जो अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उसको निभाइए, लेकिन ट्रस्ट अल्लाह पे। और नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब की हम इतनी मिसालें इस बारे में पढ़ेंगे कि मैंने कहा कि यार शुरू में मैं क्या दूँ। हर एक आयत इस वक्त नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब के जुमले की मुँह बोलती तस्वीर है। मुझे है हुक्म असां ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बारे में एक आयत आने वाली है कि जिसमें अल्लाह ने हम सब के वीक पॉइंट्स खोल दिए। 8 चीज़ों को सामने खड़ा करके कहा, बताओ तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा प्यार है ये इनसे, अहब्बा इलैकुम, तो फिर आज से सोच लो। तो आज हुक्म असां में यही है कि इन घरों को सजाइए मगर बुत ना बनाइए, इन घरों को साफ़ सुथरा रखिए मगर पूजिए नहीं, इन घरों में दिल दिमाग ना लगाइए क्योंकि हमारे पास काम बहुत है। और ईमान की ताकत में आज हम बड़े ताकतवर लोगों से मिलने वाले हैं। ग़ज़वा बदर के साथी, पारे के शुरू में सूरत अनफाल का एंड, कि कैसे पहली सी जंग थी, ना कभी की ना की, ना कोई उसमें कोई पहले से पता था, लेकिन उसके बावजूद जीते। फिर असाबे हुनैन इज़ा जबत कुम कसरत कुम, चंद लोगों के दिल में ये ख्याल आ गया कि आज तो तैयारी बड़ी है, आज तो हम करीब बहुत रहे, पहले तो 313 थे, आज तो हम हज़ारों में, अल्लाह ने झटका दे दिया और वो फौरन संभल गए। थोड़े से लोगों के दिल में गुमान आया और सज़ा सबको मिल गई, जैसे उहद में चंद लोगों की गलती थी। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि उम्मत मुस्लिम आज तो पूरी की पूरी गुनाहों में डूबी है, फिर जब अल्लाह ने झटका दिया हुआ है तो हम क्यों नहीं समझ रहे कि ये किसकी सज़ा कौन भुगत रहा। फिर असहाबे तबूक, आप कह लीजिए कि बदर गलबा इस्लाम का आगाज़ था और तबूक उसका इत्माम था। अल्लाह ताला ने दोनों जंगों को इस बारे में जमा करके बता दिया कि नबी की ज़िंदगी अलिफ से ये तक A to Z अल्लाह के दीन को गालिब करने में गुजरी। तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगियों का मकसद क्या है, तुमने अपने आप को किन चीज़ों में रखा है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे साथ क्या मामला था। फिर इसमें ईमान की ताकत देखेगी मुहाजरीन की, जिन्होंने घर छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिए, मोहब्बतें छोड़ दी, प्यारे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ कर आ गए। और फिर ईमान की ताकत दिखेगी तो अंसार की दिखेगी कि एक किसी को इंसान इंच जगह नहीं देता, अपने से फालतू चीज़ दे देता, अपने मुंह का तोड़ निकाल कर नहीं देता। लेकिन अंसार ने कैसे अंसार बनकर आने वालों को मोहब्बत से गले लगाया, और फिर इस तरह ईमान की ताकत चाहिए रिश्तों के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। ये हम सब हैं इसमें। तो गलबा इस्लाम के लिए आज खड़े होने वाले असल में ईमान की ताकत वाले लोग हैं, वरना इबादत करने वाले तो बहुत हैं लेकिन आज इस्लाम के लिए खड़े होने वाले बहुत थोड़े हैं। सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 से 75 है, आइए तर्जुमे के साथ साथ चलते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रुकू नंबर 5 आयत नंबर 41 से 44। माल गनीमत की तकसीम। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल। और जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो, इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबत दारों का और यतीमों का और मिसकीनों का और मुसाफिरों का, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है जो दिन हक़ और बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें आपस में भिड़ गई थीं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वह दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे ही था, अगर तुम आपस में वादे करते वक्ते मुय्यन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था। इस पारे का एक एक जुमला हाईलाइट करने के काबिल है, तर्जुमा सिर्फ। और ये तर्जुमा आपको तब समझ आता है जब आपने इसको पहले थोड़ा बहुत समझा हो। अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर, यानी यकीन जानकर हलाक हो, और जो ज़िंदा रहे वो भी दलील पर हक पहचान कर ज़िंदा रहे। बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला खूब जानने वाला है, जबकि अल्लाह ताला ने आपको आपके ख्वाब में उनकी तादाद कम दिखाई, अगर इनकी ज़्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह हमें भी इख्तलाफात से बचा ले। वो दिलों के भेदों से खूब आगाह है, जबकि इसने बवक्ते मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाया और तुम्हें इनकी निगाहों में बहुत कम दिखाया, ताकि अल्लाह ताला इस काम को इंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था। आपको फील हो रहा है? डिटर्मिनेशन है अल्लाह की। इस्लाम गालिब होना है, मैंने करना है, तुम अपना हिस्सा डाल लो तो डाल लो, नहीं डालते तो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह अपने काम खुद जानता है, क्योंकि और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। तो ये था पहला रुकू जो पिछले पारे से कंटिन्यू हुआ, एक आयत इसमें ईमान से मुतल्लिक। इन कुंतुम आमन्तुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना। शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। माल गनीमत लेने के लिए साहबे कराम और सच्चे मोमिनीन मैदान जंग में नहीं जाते थे और नहीं जाते। अल्लाह के काम करने के लिए कोई माल के लिए नहीं आता, साफ पता लग जाता है कि कौन माल लेकर ये काम करता है और कौन बग़ैर माल के। इस सारे क़िस्से में हमारे लिए कुछ अमल के नुक्ते। कामयाबी अल्लाह की मदद से है और अल्लाह की मदद असबाब के पर्दे में छुपी होती है। ये नहीं हो सकता कि आप असबाब ना इस्तेमाल करें और अल्लाह मदद कर दे। साहबा घर से निकले, मैदान बदर में गए, फिर मदद आई। दूसरी चीज़, मलकियत की बुनियाद कब्ज़ा नहीं असूल है। आज हम तो दीन की चीज़ों को कब्ज़े में लेके बैठे होते हैं, मोनोपलीज़ है हमारी। वन मैन शो, ये फलां की मस्जिद है, ये फलां का इदारा है, ये फलां की चीज़ है। याद रखिए, इज्तमाई चीज़ इनफरादी बंदे की मर्ज़ी पे नहीं चलेगी। माल गनीमत में अगर किसी के हाथ कुछ आ जाता था, वो उसका धागा और उसकी सुई सिलाई तक जाकर अमीर के पास जमा कराता था और फिर उसके बाद वहाँ से फिर बटती थी, हो सकता है वही चीज़ उसको मिल जाए। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 साल 25 साल हो गए नूरुल कुरान को, हर आने वाली चीज़ को भी नोट करवाते हैं और फिर हर जाने वाली चीज़ को नोट करवाते हैं। ये नहीं कि इधर आई चलो यूज़ कर लो, पता ही नहीं किसने क्या यूज़ किया। जिधर हिसाब किताब नहीं वहाँ नीयत ख़राब नहीं होती, बेपरवाही हो जाती है। लिहाजा ऐसे इज्तमाई माल के बारे में इंसान इतना डरे जितना शायद अपने सोने चांदी हीरे मोती के बारे में ना डरे। ये तो हमारा नुकसान होगा, उधर दीन का नुकसान होगा। इसी तरह एक और सबक है, कोई इंसान सिर्फ इस वजह से किसी चीज़ का मालिक नहीं बन जाएगा कि वो इत्तफाकन इसके कब्ज़े में आ गई। याद रखिए कि अल्लाह की चाहत है कि हक हक हो और बातिल बातिल हो। इब्तिदा में ये काम दावत के ज़रिए होता है, जो इस वक्त हम भी कर रहे हैं, कुरान का नूर फैलाकर, तबलीग करके। कलम पकड़े में आपने माशाल्लाह, आप लिख रहे हैं, आप और सब इस वक्त हक को हक करने में मददगार हैं। लेकिन इसकी इंतहाई सूरत जंग और किताल है, गज़वे बदर जैसे वाक़यात। ये जो आज तक समझ ना सकी ना कि जिहाद है कि नहीं, ये इतनी नैरो माइंडेडनेस है कि इसको कोई समझता नहीं है। आपको इस पूरे पारे में जिहाद अपनी असल शक्ल किताल में दिखेगा। लेकिन कोई बच्चा रातों रात बड़ा नहीं होता। बीज से दरख्त बनने के मराहिल में जिहाद बिन नफ्स से लेके वो सारे वाक़यात आते हैं। तो आपका मेरा आज का ये इधर आकर बैठना, क्या ये जिहाद नहीं है? ये जिहाद है। और जो कौम कलम पकड़ लेती है उसको फिर तीर नहीं पकड़ने पड़ते। वो कौम जो कुफार के कुफर को ख़त्म करते हैं दावत इल्लाह की तरफ से, इसके ज़रिए से इबलाग करके, अपने अखलाक से, अपने मामलात से, फिर उन काफिरों के दिमागों से कुफर निकल जाता है और वफा इख्वान हुकुम फिर दीन बन जाते हैं। तलवारें तो सिर्फ उठती हैं उन पे कि जिनके दिमागों में इस्लाम के ख़िलाफ़ खुन्नस भरा हो। 13 साल कुफ़ुदिया कौम के दौरान क्या था? दावत के ज़रिए काम हो रहा था। परसिक्यूशन थी, जुल्म सहा, चुप चुप चुप, सब्र सब्रन इसबिरू, सब्र और तकवा। आज ना तकवा है ना सब्र है, रिएक्शनरी है, बेसब्रापन है। तो लिहाजा ये चीज़ सबके जहन में रहे तो आज बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब मिलता है। बदर की फतह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की सच्चाई खोल दी गई। इतनी इम्पॉसिबल फतह थी ये कि आज भी नॉन मुस्लिम लोग, यानी ब्रिटिश में आप जाकर देखें तो कई जगह ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि उस दिन मोहम्मद के साथ हुआ क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो ऐसी है कि चींटी हाथी के मुकाबले में जीत जाए। और अल्लाह करे कि आज के मुसलमान जो अपनी जान पे ये जंग जीत रहे हैं वो जीते और दुनिया देखे कि आज भी वही रब है जो कल था। बस हम इसके लिए थोड़े से डिजर्विंग हो जाएं। फिर अगला सूल, बदर में अगर मुसलमान दुश्मन की असल तादाद देख लेते तो इख्तलाफ राय पैदा हो जाता। कोई कहता कि लड़ो और कोई कहता कि ना लड़ो, और असल काम होने से रह जाता। अफसोस के साथ कहूँगी कि आज बिल्कुल उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है। सिर्फ बहसें हैं, फिरके हैं, कोई तबलीग की बात करता है, कोई जिहाद की बात करता है, कोई कुकले बात की बात करता है, कोई फिक की बात करता है, और जो असल काम था ना वो पीछे पड़ा हुआ है। कौम फानजर, बंदों को जहन्नुम से बचाकर अल्लाह से जोड़ना, ये है असल काम। असल ये चीज़ थी। आज उम्मत मुस्लिमा में कितने मस्जिदें, कितने इदारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पुरखलूस लोग काम कर रहे हैं, मस्जिदों को चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म वाले, दीन वाले सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये काम ऐसे थोड़ी होते हैं। बड़ी मस्जिदों को देखिए, बड़े बड़े इदारे हैं, जामियात है, खून पसीना एक हो रहा है, और माशाल्लाह मुखलिसीन काम कर रहे हैं। लेकिन असल काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आप सफाई करें और घर गंदा ही रहे, फिर दिन ब दिन और ही गंदा हो। इसके अंदर गड़बड़ है। कोई काम करने वाली मासी आती तो है, कुछ और ऐसे काम कर जाती है जो करने नहीं थे या बाद में करने थे या जिनकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी, और नतीजा क्या निकलता है उसको आप खुद ही देख लेते हैं। बदर में अगर मुसलमान दुश्मन की इस तादाद को देखते जो रियल थी तो शुरू में हौसले पस्त हो जाते। इससे एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या है कि इब्तदाई दौर में ईमान थोड़ा होता है। बच्चे छोटी सी चीज़ से घबरा जाते हैं, लेकिन जितना आपका ईमान बढ़ता जाएगा आप इंशाल्लाह काम पे लगे रहेंगे। अल्लाह को जब कोई काम मतलूब हो तो बदर के हालात पैदा करके काम कर देता है। ये भी एक सबक है। साहबा ने सोचा तक नहीं था कि इतनी बड़ी जंग होगी कि वहाँ से पलटने वालों को अल्लाह दुनिया में चलते हुए जन्नती कह देगा, लेकिन अल्लाह ने कमी पूरी करा दी। याद रखिए, आप अपनी थोड़ी सी खूबियाँ, अपनी थोड़ी सी सलाहियतें, अपने वेरी लेस मीन्स यूज़ करके अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े। अल्लाह आपके साथ ज़ीरो लगा लगा कर आपको 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और इन्फिनिट ना कर दे तो अल्लाह ही नहीं है। अल्लाह कमियां पूरी करता है। आपके बच्चे के पास थोड़े से पैसे हैं, आप रोज़ देखती हैं वो गले में डाल रहा है क्योंकि उसको कोई गेम लेनी है, कोई साइकिल लेनी है। अखीर आप देखते हैं कि ये बेचारा कितने दिन से पैसे जमा कर रहा है। दुकान पे ले गए, लाओ भाई बेटा क्या निकला? मामा $25 निकले हैं। जो साइकिल देखनी थी वो $100 की है। बच्चा कहते हैं ये तो नहीं मिलेगी। आप कहते हैं लाओ कमन। दुकानदार से आप कहते हैं कि ये 25 पकड़ो और बाकी मेरे कार्ड में से ले लेना, ये अल्लाह की सुन्नत। आप अपने बच्चे के साथ अल्लाह से ज़्यादा प्यार तो नहीं करती? आपके मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ने ज़ीरो लगाए हुए हमारी खूबियों को, और कुछ भी तो नहीं। फेथ इन एक्शन, माल के हवाले से अपनी और घर वालों की औलादों की तरबियत करनी है। आज मनी मैनेजमेंट सिफर के करीब है हमारी यंग नस्ल की, सिफर। क्या फ़र्क पड़ता है, इतने का कार्ड भी है, ऐसे ही कर देंगे, विप्स कर देंगे और यहाँ बतनी जेल करते हैं। मनी मैटर इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ मनी मैटर्स। माली मामलात में अदल और इंसाफ से फैसला करना है, दीन के कामों को अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक करना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 6, 45 to 48, किसी भी मकसद, ये जो मैं लफ्ज़ किसी पे गौर कर रही जोर दे रही ना, इसको ज़रा फील कीजिएगा, किसी भी मकसद, चाहे वो दुनिया का हो चाहे दीन का हो, घर को चलाना हो, मस्जिद को चलाना हो, कोई बिजनेस हो, कोई फैक्ट्री रन करनी हो, यानी सेक्युलर हो या सेक्रेट हो, किसी भी लेवल पर कामयाब होने के 8 असूल पढ़ने लगे हम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक पुकार आपके नाम आपके रब की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐमन वालो, जब तुम किसी मुखालिफ फ़ौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करते रहो, और आपस में इख्तलाफ ना करो, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र और सहार रखो। यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन लोगों जैसे ना बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुद नुमाई करते हुए अपने घरों से निकले और अल्लाह की राह से रोकते थे, जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह ताला उसे घेर लेने वाला था। जबकि इनके अमाल को शैतान इन्हें जीनतदार बनाकर दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता। झूठी तसलियाँ, मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ, लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुईं तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया और कहने लगा, मैं तुमसे बरी हूँ, यानी मैं नहीं तुम्हें जानता तुम कौन हो, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। क्या थे वो फरिश्ते? मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अज़ाब वाला है। देखिए झूठ, आज भी कई लोग शैतान वाला ये झूठ बोलते हैं, अल्लाह से बड़ा डर लगता है, अल्लाह से बड़ा डर लगता है, तो फिर छोड़ते भी नहीं वो चीज़, फिर नेकियों की तरफ भागते भी नहीं, फिर फजर के लिए उठते भी नहीं, तो ये झूठ बोल रहे हैं आपके, आपको अल्लाह से बड़ा डर लगता है। सांप आ जाए तो बैठे रहेंगे, एक कॉकरोच आ जाए तो नहीं बैठे रहते, जिसको जहन्नुम के सांप बिच्छू नजर आए वो बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, सोता रहेगा, हराम खाएगा वो नहीं खाएगा। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि अपने इन जुमलों पे हम खुद देखें कि वाकई हमें अल्लाह का खौफ है। ईमान से मुतल्लिक एक आयत है इस रुकू में, 45 अनफाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो क्या पता चला, अल्लाह की मदद पाने के लिए अल्लाह का जिक्र करना होगा, अपना नहीं। आज हम अपने कसीदे पढ़ते रहते हैं, अपनी बातें करते रहते करते रहते, और अल्लाह ताला की बात पीछे रह जाती। तो देखिए इस रुकू में हमें 8 असूल दिख रहे हैं, 4 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव। फसबतु वस्कुरु व अतीउल्लाह व रसूलहु, ये हो गए, और फिर वला तनासउ वस्बिरु वला तकूनु कल्लज़ीन खरजु मिन दियारिहिम बतरं व रियान्नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ये हैं जी वो चीज़ें जिस पे अगर उम्मत मुस्लिमा आज अपने आप को जमा ले तो हर मैदान में जीतेगी। फसबुतु, साबित कदम रहो, स्टेडफास्ट हो, बी डिटर्मिंड, साबित कदमी रहो, जमे रहो, जो काम शुरू करो उसको पूरा करो, शुरू से आखिर तक बैठकर क्लास लो, अधूरे कामों से पूरे नतीजे नहीं निकलते। दीन का कोई भी काम शुरू करो, कुरान का कोई भी कोर्स शुरू करो, किसी लेवल पे कुछ भी करो, तो तुम उस वक्त खड़े हो जाओ, जम जाओ, सिंगल माइंडेड हो जाओ, डेडिकेशन के साथ काम करो, डिली डैली का शिकार ना हो। आप चावल पकाएं और अभी आधे पकें तो चूल्हा बंद कर दें, खाएगा कोई उसको? स्वेटर बुनना शुरू करें और बीच में छोड़ दें, कोई पहनेगा उसको? कपड़ा सीना शुरू किया, पूरा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, तो लिखिएगा। जब हम कोई काम अधूरा करते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलती। और जो सबसे बुरी बात है वो क्या है कि फिर अधूरे इल्म वाले पूरे उस्ताद नहीं बनते। जब तक पूरा इल्म लिया ना हो कभी उस्ताद ना बने, ये मैं अपने ऊपर बात रख के आपको कहूँगी। मैं तो अभी आज तक उस्ताद नहीं बनी, मैं तो खुद अभी भी आप सीखने वालों में से हूँ। मुझे जो कहेगा मैं उसका सुनना शुरू कर दूंगी। कभी कोई डिग्री देता है अधूरे इल्म पे? डिग्री, सर्टिफिकेट, पेपर, कितना मिस किया, कितना छोड़ा। तो अल्लाह कह रहे कि डबल माइंडेड ना बनो, बैक टू स्क्वेयर वंस ना बनो। ये पहली चीज़ है। और यही आज काम है, अधूरा पधूरा, आधा पचद्दा। वो कहते हैं ना कि मिनटों में रेडी, क्विक सेट, 5 मिनट में तैयार। डब्बों पे इधर लिखा होता है ये चीज़ ले जाएं घर जाएं कि 3 मिनट में रेडी, माइक्रोवेव में डाल दो, ओवन में डाल दो। क्या अल्लाह का दीन ऐसे चलता है? कच्ची ईंटें हों और उस पर इमारतें बनती हैं, भट्टों में पकाते हैं मिट्टी की ईंटों को, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े प्लाजे बन जाते हैं। हज़रत इब्राहिम को जब आग में डाला था तो रो रहे थे, हाय अल्लाह बचा लो। देखिए आग में तो बाद में डाले, मंजनीक पे बांधा, सामने आग है जिसको पंजाबी में कहते हैं भांबड़ा लगा हुआ था। कोई नहीं, इले माफ़ कर दो, नहीं नहीं मैं तौबा करता हूँ। आज हम थोड़ा सा एक कदम आगे तो दो पीछे, फिर एक आगे फिर पीछे, रिलक्टेंट। नतीजा क्या निकलता है? अधूरी नेकियाँ, अधूरे काम। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि जिक्र करो, याद करो, जिसके नाम पे निकले हो उससे मदद मांगो, वो खुद ब खुद तुम्हारा हाथ थामेगा। फिर तीसरी बात, अल्लाह रसूल की स्ट्रेटजीज के मुताबिक काम करो। तुम्हारी शादी, तुम्हारा घर, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना दीन के मुताबिक हो। ये यहाँ 2 घंटे पढ़ा कर तो नहीं कोई दीन वाला बन जाता, या आप 2.5 घंटे क्लास लेकर तो दीन वाले नहीं बनेंगे। मुजाहिद के लिए आलिम होना पड़ेगा, होगा, यानी उसको इल्म चाहिए कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसे थी। इल्म नहीं है सीरत का तो पढ़ेंगे कैसे और अमल कैसे करेंगे? फिर रूल्स ऑफ इंगेजमेंट मालूम हो, पता हो कि कैसे करना है, जोड़ना आता हो, तोड़ना ना आता हो। आप उस्ताद तो बन जाएंगे लेकिन आप लीडर कभी नहीं बनेंगे अगर आपके अंदर वो हिकमत नहीं होगी। सब्र करो, भूख प्यास सहो, नागवारी बर्दाश्त करो। कभी फेल हो गए हो तो बददिल ना हो। कई जगह याद रखिए, जहाँ कोई काम होगा वहाँ शिकायतें उठेंगी, किसी को इंतज़ामिया से, किसी को उस्तादों से, किसी को शागिर्दों से। दुनिया में आपकी पहले डिग्री और रेजुमेट देखी जाती है, फिर जॉब दी जाती है। अल्लाह आपका दिल देख के आपको जॉब दे देता है, कच्चे पक्के। हर बंदा ये कह रहा होता है मैं नहीं जानती कुछ, मुझे नहीं आता। माइक पकड़ाएं तो कांप रहे होते हैं, किसी जगह कंप्यूटर के लिए बैठाओ तो लरस रहे होते हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल के इखलास पे तुम्हें बुला रहा है, वो सिखाएगा तुमको, पहले तुम्हारी तड़प देखेगा। तो लिहाजा जब कभी अल्लाह के किसी रास्ते में निकलें, बी ओपन माइंडेड, छोटी छोटी गलतियां ना देखें, एक एक मिनट ना गिने, ऊपर क्यों चला गया, नीचे क्यों चला गया, ये कोई जहाज की फ्लाइट थी कि जिसको ऊपर नीचे नहीं होना था? हाँ, हमारी तो वक्त की कदर ही नहीं है, फरिश्तों की जमात नहीं होती अल्लाह के काम करने वाली। कभी आपस में भी झगड़े होने लगते हैं, किसी की बात अच्छी लगी, किसी की बुरी लगी, सब में कमजोरियां। तो अल्लाह कहते हैं बस वीरू, हर हाल में खुद को थामे रखो। और मैंने देखा है कुरान पढ़े हुए लोगों के सिवा किसी में ये खूबियां नहीं होती। मुझे नहीं पता उनके नंबर कितने आते थे, मुझे नहीं पता कि उनके तर्जुमा और फहम के पेपर कैसे थे, ग्रामर कैसी है, लेकिन ये है वो 8 नुकात जो कुरान पढ़कर निकलते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नहीं देखते, दिन रात सुबह शाम आप नहीं देखते? जिधर मैं जाती हूँ मुझे अंसारुल्ला दिखते हैं, मैं कहती हूँ किस में ये खूबी है? ये सिर्फ अल्लाह की खूबी है, ये अल्लाह की ज़ात है। कुरान बंदे को सहार लेता है, फिटीनेस ख़त्म होती है, आला जर्फी आती है, भूख प्यास पे काबू आता है, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना आता है। याद रखिए, जिन लोगों ने किसी उस्ताद के साथ नहीं पढ़ा होता कभी भी वो फॉर्म नहीं होते, वो हवाएं होती हैं इधर की उधर उड़ उड़ के चली जाती हैं। उनके चॉइसेस जो बहुत सी होती हैं, नहीं इनसे नहीं लेंगे उनसे लेंगे, अच्छा इधर से लिया उधर से लिया अब उधर कर लेंगे, ये नहीं हमसे कराते हम उनसे करा लेंगे, आपकी कोई सही नहीं बनेंगी। मिलजुल कर रहो, बस वीरू वला तनाज़ो, तुम फ़र्क हो दूसरे से, लोग गलत नहीं मुख्तलिफ होते हैं। और नारेबाजी अंदाज नहीं होना चाहिए, इन फाइटिंग ना हो कि आपस में ही लड़ते रहो। और सबसे बड़ी बात कि कॉज के लिए जुड़ो। तो लिहाजा ये खूबियाँ लेकर उम्मत मुस्लिमा को जोड़िए, गज़ा का नतीजा बहुत जल्दी निकल आएगा। और बाकी भी दुनिया के जिन मुल्कों में कोई जंग लगी हुई है या कोई और जंगें हैं, हमारी अपनी नस्लों की जंगें थोड़ी लगी हुई हैं, उनके दिमागों पे थोड़े हमले हैं, तो हम इंशाल्लाह से कहा करें कि या कवी या कवी कवी नहीं, या अल्लाह मुझे मजबूत कर दे। और अपनी ज़ात से शुरू करें, किस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको मुझे खूबसूरत नुक्ता दिया। और एक और बात नोट कीजिए कि कामयाबी अल्लाह की मदद से आती है, और मदद चूँकि इसबाब के पर्दे में छुपी होती है इसलिए हमें दिख नहीं रही होती। मुसलमान अगर आज अपने मुमकिन इसबाब इस्तेमाल करें, अल्लाह कमज़ोरियों के बावजूद उनको नुसरत देगा। तो फेथ इन एक्शन क्या है? बाहमी तनकीद और इख्तलाफ से बचना है, सब्र के साथ टीम के साथ जुड़े रहना है, बड़े मकसद के लिए अपनी ज़ात को छोटा करना है, ईगो और अना से हटकर सिर्फ छोटी सी बात पे मैं नहीं करती काम, मैं छोड़ रही हूँ तो छोड़ जाओ, आपके लिए और बहुत जगह हैं, आप उधर कर लेंगे अल्लाह आपकी जगह भी खाली नहीं रखेगा। और नहीं रहेगा तो ना सही, अल्लाह नहीं पूछेगा, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और कामयाबी के लिए जितने असबाब हैं वो रख दीजिए, दरख्त के नीचे बैठ जाइए, अल्लाह खुद ही लोगों को वहाँ तक बुलाएगा, रास्ते बनते जाएंगे। लेकिन जो काम करें उसको पहले पूरा करें फिर करवाएं। आगे जी रुकू नंबर 7, 49 से 58। अल्लाह ताला ने कुफार पर अपनी सख्त गिरफ्त की बात की है। इस यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीन फ़ी कुलूबिहिम मरद, जबकि मुनाफिक कह रहे थे और वो भी जिनके दिलों में रोग था, कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है, जो भी अल्लाह पर भरोसा करे बिला शुबा अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। काश के तू देखता कि जब फरिश्ते कुफार की रूह कब्ज़ करते हैं, इनके मुंह पर और पीठों पर मार मारते हैं और कहते हैं तुम जलने का अजाब चखो, बस अब इन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, मिसल फिरौनियों के हाल के और इनसे अगलों के, कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया, बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बायस इनको पकड़ लिया। अल्लाह ताला यकीनन कुव्वत वाला और सख्त अजाब वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमा कर फिर बदल दे, जब तक कि वो खुद अपनी इस हालत को ना बदल दे जो कि इनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला, या जहाँ भी आ रही है और आगे भी आएगी। आज हमारे हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितनी हमारी हालत ख़राब है। आप हालत ठीक कीजिए, अल्लाह हालात ठीक कर देगा। मिसल हालत फिरौनियों के और इनसे पहले के लोगों के, उन्होंने अपने रब की बातें झुटलाईं, बस इनके गुनाहों के बायस हमने इन्हें बर्बाद कर दिया और फिरौनियों को डबो दिया, ये सब जालिम थे। यहाँ फिरौनियों की बात क्यों आ गई? एक वजह है, मुमासलत की नोट करना चाहे तो कर ले। फिरौन पानी में डूब कर मरा, बदर में जो कुफार मारे गए उनको भी बदर के कुएं में फेंक दिया गया, तो ये मुमासलत इधर है। ये सब जालिम थे, तमाम जानदारों से बदतर। अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो कुफर करें फिर वो ईमान न लाएं। आप नोट कीजिए, दूसरी बार आए इतना शर्रत दबाव सूरत अनफाल में। एक होता है दबाव, जानवर जानवरों में भी बदतरीन जानवर, तो आप कैसे उनको बचा सकते हैं? जो अल्लाह को नहीं पहचानता, जो मालिक को नहीं पहचानता, मैं और आप उसका दिफा कितना को कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं कि उन तक खैर पहुँचाएँ ताकि वो भी अल्लाह से जुड़ें। जिनसे तुमने अहदो पैमान कर लिया फिर भी वो अपने अहदो पैमान को हर मरतबा तोड़ देते हैं और बिल्कुल परहेज़ नहीं करते, बस जब कभी तू लड़ाई में इन पर गालिब आ जाए, इन्हें ऐसी मार मार के इनके पिछले भी भाग खड़े हो सकता है कि वो इबरत हासिल कर लें। और अगर तुझे किसी कौम की खयानत का डर हो तो बराबरी की हालत में इनका अहदनामा तोड़ दे। अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। कितनी सख्त आयतें, और अल्लाह को हक है कि वो कहे। देखिए, माँ बच्चे को डांटे ना तो बच्चा सह लेता है, और माँ की जगह अगर बहन डांटे ना तो कहता है तुम क्यों मेरी अम्मी बनती हो। अल्लाह के बंदे अल्लाह जो मर्जी के, आप मैं नहीं कह सकते। ईमान से मुतल्लिक एक आयत है इसमें, आयत 55, इन नशरवत दवाब वाली, जो मालिक का हक नहीं पहचानते वो जानवरों में भी बदतरीन है। क्या पता चला कि सिर्फ खुश फहमियों से और दुआओं से कौमों की तकदीर नहीं बदला करती, इसके लिए खून जलाना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फेथ इन एक्शन, अपने जोरे बाजू पर नहीं अल्लाह की मदद पे यकीन रखना है। अपने हालात बदलने के लिए अपनी आदत बदलनी है, ज़रा सा इस पे एक सेकंड गौर कर लीजिए। अपने किए हुए अहदों की पासदारी करनी है और अमानत में खयानत नहीं करनी। अल्लाह ताला हम सबको खाइन होने से बचाए।